ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਜਬਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਇਨ ਮੈਦਾਨੋ ਮੇ ਆਪ ਸਭੀ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹੈਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਲਗਨ ਕੇ ਸਾਥ ਯੁਕਤ ਹੋਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤੀਯ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾ ਕਈ ਬਰਸੋਂ ਸੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਤਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ 21 ਬਰਸ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀਯ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੁਆ ਔਰ 19 ਬਰਸ ਬਾਅਦ ਜਬਲਪੁਰ ਮੇ ਫਿਰ ਸੇ ਸਮਾਗਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੇ ਦੁਰਗ, ਰਾਏਪੁਰ ਇਤਿਆਦਿ ਮੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਆਯੋਜਨ ਹੋਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਇੰਦੌਰ ਮੇ ਵੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੇ ਵੀ, ਕਟਨੀ ਮੇ ਵੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਸਾਗਰ ਮੇ ਵੀ ਐਸੇ ਆਯੋਜਨ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਹੋਤੇ ਆਏ ਹੈਂ। ਅਕਸਰ ਏਕ ਬਰਸ ਛੋੜ ਕਰ ਇਨ ਪ੍ਰਾਂਤੀਯ ਸਮਾਗਮ ਕੀ ਬਾਰੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਬੀਚ ਮੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇ ਵੀ ਵਕਫੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੋ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਯੇ ਜਬਲਪੁਰ ਮੇ ਸਮਾਗਮ ਕਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਰਸ ਕਾ ਯੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀਯ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਕੀ 23 ਸੇ ਲੈ ਕੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਕੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਮੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਭੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੇ 7 ਔਰ 8 ਮਾਰਚ ਕੋ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁਆ। ਤੋ ਸਭੀ ਸਮਾਗਮੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭਰਪੂਰ ਐਸੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾਏ ਪ੍ਰਬਲ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਸੀ ਕਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਵੀ ਯਹੀ ਏਕ ਭਾਵਨਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸੀ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਅਨੇਕੋ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇ ਵੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾਓਂ ਸੇ ਯੁਕਤ ਭਕਤ ਜਨ ਯੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਯੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਅਭੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਸੇ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ, ਜਹਾਂ ਸੇ 22 ਫੈਬਰੂਰੀ ਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਕੋ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮੇ। ਤੋ ਉਨ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਯਹੀ ਦੇਖਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਮਾਨਵਤਾ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਵਹਾਂ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯਹੀ ਹਾਮਨੀ ਇਨ ਵਨਨੈਸ ਕੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਤੋ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੁਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਈ ਥੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉਨਕੇ ਮਨ ਮੇ ਵੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਗ ਲਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸੀ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਏ। ਐਸੀ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਈ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ सबसे ज़्यादा जाति पाति को लेकर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं और सबसे ज़्यादा जाति पाति को लेकर घृणा और हिंसा की जाती है। तो महापुरुष भक्तों का अभिप्राय यही रहा है गुरु वलियों पीरों पैगंबरों का युगों युगों से कि इंसान की जाति में पैदा हुआ इंसान इसी जाति की कदर कर ले कि मैं इंसान हूँ, और इंसान होना उसकी फितरत में आ जाए, यानी कि इंसानी चाल चलने लग पड़े, जाति पातियों से ऊपर उठकर, मज़ो मिल्लत से ऊपर उठकर, रंग नस्ल से ऊपर उठकर, कल्चर्स और संस्कृतियों से ऊपर उठकर, एक वजूद अपना पहचाने कि मेरा असली वजूद क्या है, मेरी असली एंटिटी क्या है। जिस बाहरी सिलसिलों को ही अपना वजूद मानकर बैठ गया है, अपने जिस्म को, जिस्म के रंग को, अपनी चमड़ी के रंग को या दूसरे की चमड़ी के रंग को, अपने लिबास और दूसरे के लिबास को, अपने सर ढांकने को और दूसरे के मुंड मुंडवाने को, अपनी भाषा को और दूसरे की भाषा को, तो यही इसकी एक हमेशा से पहचान बनती आई है और नापतोल भी इसकी इसी अनुसार रही है। तो ये असली वजूद नहीं है, ये असली एंटिटी नहीं है। जो मालिक ने जन्म दिया था वो एंटिटी इंसान उसमें स्थित अभी हुआ ही नहीं है। और महापुरुषों संतों का भी प्राय यही रहा है कि अपने असली वजूद में ये स्थित हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए। इसका असली वजूद एक निर्मल परमात्मा की अंशात्मा के रूप में है, जिस परमात्मा की कोई जाति नहीं है। परमात्मा की क्या जातियां हैं? परमात्मा को किस कल्चर के साथ बांधेंगे? परमात्मा को किस लिबास के साथ बांधेंगे? किसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे परमात्मा को? तो परमात्मा की कोई जाति नहीं है और ना ही साधु की जाति होती है। जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो ये परमात्मा की अंश आत्मा है। तो परमात्मा की अगर कोई जाति, कोई कल्चर, कोई संस्कृति नहीं है, परमात्मा काला गोरा नहीं है, तो फिर इसी की अंश आत्मा ही तो इन जिस्मों में बसती है। वही आत्मा बसती है जिसका मूल परमात्मा है, जिसकी कोई जाति नहीं है। तो फिर ये जाति पाति, ये बाकी तमाम भेद वाले भाव ये कहाँ से उत्पन्न हो गए? इसके पीछे कारण अज्ञानता रहा है, और अज्ञानता ने ही खुदगर्जियों को भी जन्म दिया है, संकीर्णताओं को भी जन्म दिया है, अपने पराए के भेद माने हैं, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी की हैं, और जिसकी वजह से नफ़रत की आग में जलते और जलाते चले आ रहे हैं। सदियां बीतती चली जा रही हैं, जंगें भी हुई हैं, कुछ सैकड़ों और हज़ारों नहीं, आंकड़े बताते हैं कि इस वॉर में मिलियंस डाइड, इतने लाखों इस नश्वर शरीर को इस तरह से उन्होंने त्यागा। और इसी तरह से तशद्दुद, एक्सट्रीमिज्म, ये भी हम देख रहे हैं कितनी क्रूरता और कितनी कठोरता, कितनी निर्दयता, ये हम दृश्य देख रहे हैं। जो घटना चक्र चारों तरफ चल रहा है उससे हम वाकिफ हैं, क्योंकि मीडिया और टेक्नोलॉजी ने एक इन्फॉर्मेशन लेवल जिसको हम देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेवल कितना, वो उसको विस्तार प्राप्त हो चुका है, कितनी इजी एक्सेसिबिलिटी होती चली जा रही है। तो हम वाकिफ हैं हालातों को देखकर, अपने मुल्क के किसी गांव, किसी खेड़े, किसी शहर में क्या हो रहा है, विश्व के किसी मुल्क, किसी रीजन में, किसी कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, ये सब दृश्य हमारे सामने आते हैं। तो इसके पीछे यही एक सोचने पे मजबूर होते हैं कि एक तरफ तो इंसान 21वीं सदी तक पहुंच गया है, दूसरी तरफ इसका पिछड़ापन भी उसी प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पर इतनी तरक्कियाँ, इतनी एडवांसमेंट, इतनी प्रोग्रेस, और दूसरी तरफ इसका पिछड़ापन देखो, इतनी हैवानियत, कितनी शैतानियत देखो, कहीं पर भी नज़र नहीं आता कि 21वीं सदी में पहुंच गया है। लगता यही है कि अभी भी प्रिमिटिव कहीं पर उस एज में ये ड्वेल कर रहा है, उसमें ये रह रहा है। इस तरह की एक इंसान की ये फितरत बन चुकी है। तो महापुरुष संत जन असली वजूद, इसका असली जो वजूद है उसको स्थापित करने के लिए ये लगातार ये संदेश और पैगाम दिए चले जा रहे हैं, ये याद कराए जा रहे हैं उन पैगामों, उन आदेशों, उन उपदेशों की जो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने इंसान को दिए, इंसान के हित के लिए, इंसान के पार उतारे के लिए, वातावरण को सुंदर बनाने के लिए। ये उनके पैगाम, वो जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, जो भूलते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर भक्तजन वही पाठ फिर से याद करा रहे हैं कि हमने वो पाठ याद करना है, हमने वही शिक्षाएं धारण करनी है, हमने वो सब कुछ अपने जहन से निकाल देना है जो हमारे लिए भी नुकसान का कारण बन रहा है और हमारे द्वारा औरों का भी नुकसान हो रहा है। सारा वातावरण दूषित, विषैला होता चला जा रहा है। उस भावना से हम ऊपर उठ जाएं, यानी कि वो जहन, हमारे दिलो दिमाग में वो बातें जो घर कर चुकी हैं उसको हम बहा दें, उसको हम तज दें। एक लर्निंग प्रोसेस होती है, एक अनलर्निंग प्रोसेस होती है कि हमने कुछ सीखना है, उसको हम कहते हैं कि लर्निंग। आई एम लर्निंग दिस सब्जेक्ट, आई एम लर्निंग दैट लैंग्वेज। तो वन इज लर्निंग प्रोसेस एंड द अदर वन इज अनलर्निंग प्रोसेस। अनलर्निंग का मतलब जो मैं सीख चुका हूँ, जो धारण कर चुका हूँ, वो उसकी तरह मैं फिर से ब्लैंक हो जाऊँ, वो अपने जहन, दिलो दिमाग से निकाल दूँ, जैसे कभी वो मेरे जीवन में वो भावनाएँ आई नहीं थी, मेरी कभी वो सोच बनी ही नहीं थी, जैसे वो स्लेट के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर चौक के साथ कुछ लिख दिया गया और डस्टर के साथ उसको पोंछ दिया गया, तो ज़रूरत इसी बात की है कि वो जो लिखा गया, जो जहन, दिलो दिमाग में मेरे बस गया, मेरी जो दृष्टि, मेरी जो भावनाएं, मेरी जो संकीर्णताएं, मेरी जो नफरत वाली भावना, हिंसा वाली भावना, उसको उसी तरह से पोंछ डालूं और वो लिख डालूं अपने जहन, अपने दिलो दिमाग में, जिसके कारण हरि की दरगाह में भी शर्मिंदगी ना होगी बल्कि परवानगी हो जाएगी। ये इंसानी जन्म का रुतबा भी ऊंचा करने वाला बन जाऊंगा। तो वो गहरे से वो मेरे जहन, दिलो दिमाग में वो लिखा जाए, वो मैं सीख लूँ, उस पे चल निकलूँ। तो इस तरह से महापुरुष संत जन ये लगातार यही संदेश, यही पैगाम दिए चले जा रहे हैं। जैसे कि आज भी आपने श्रवण किया, कहीं पर बुंदेलखंडी भाषा में श्रवण किया, कहीं मैथिली भाषा में श्रवण किया, कहीं पर आदिवासी भाषा में श्रवण किया, कहीं सिंधी भाषा में, कहीं पंजाबी भाषा में, कहीं अंग्रेजी भाषा में, भाषाएं कोई सी भी रही हों, लेकिन संदेश महापुरुषों ने यही दिया है कि हमने अपने आप के वजूद में कायम होना है, हमने अपने असली अस्तित्व में कायम होना है, यही एक वजूद हमारा स्थापित होता चला जाएगा तो फिर ये भेदभाव मिट जाएंगे, ये दीवारें गिर जाएंगी, फिर कोई पराया नज़र नहीं आएगा, फिर सारे अपने ही नज़र आएंगे, फिर किसके प्रति विपरीत भावना, किसके ऊपर जुल्म सितम, फिर एक आत्म भाव बन जाएगा, एक आत्म भाव बन जाएगा। उसी दृष्टि से हम देखेंगे कि कण कण में भी देख रहे हैं, घट घट में भी देख रहे हैं। और जैसे कहा है कि ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई, फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं रह जाता है। सगल संग हमको बने आई, फिर सभी से मेरी बने आई है, अब मेरे लिए कोई पराया नहीं है। किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। फिर किसके ऊपर पत्थर फेंकूं, जब शीश महल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं, उस शीश महल में शीशे ही शीशे हैं, और हर आईने में मेरा ही अक्स, हर शीशे में मेरा ही अक्स, मेरी ही रिफ्लेक्शन। इसी तरह से ज्ञान दृष्टि जब पाई तब अपना ही अक्स दूसरों में नज़र आना शुरू हो गया, अपनी ही रिफ्लेक्शन दूसरे में नज़र आनी शुरू हो गई। फिर बेगाना करके क्यों देख पाया, फिर दूसरे को बेगाना देख ही नहीं पाया, जब अपने आप की ही रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ। फिर वो तो अपनी जानी पहचानी शक्ल है, फिर तो जाना पहचाना वजूद है, जब अपनी ही रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है तो इसका मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ, अपने आप से वाकिफ हूँ। फिर दूसरे को पराया करके कैसे देखूँगा, स्ट्रेंजर करके कैसे देखूँगा, नीचा करके कैसे देखूँगा, वो दृष्टि ही नहीं रहेगी। इसीलिए संतों के बारे में कहा जाता है कि ये समदृष्ट होते हैं, समदृष्ट प्रभु नाम तिहारो। कि एक समदृष्टा बन जाते हैं, और ज़रूरत यही है, अगर ये दृष्टि नहीं बनती है उतनी देर फिर ये कहीं पर भी हृदय में अपनेपन वाली भावना पैदा नहीं होगी, और जब अपनेपन वाली भावना पैदा नहीं होगी तो फिर नफरत और वैर के सिवाय और कुछ ना होगा, घृणा और ईर्ष्या के सिवाय कुछ ना होगा। और जितने भी नुकसान हुए हैं इसी घृणा और नफरत के कारण हुए हैं, जितने भी नुकसान हुए हैं इसी झूठे अभिमान के कारण हुए हैं। तो इसलिए ये नुकसान वाला रास्ता ये तजने के लिए ही महापुरुषों ने, संतों ने इंसान को झिंझोड़ा है, इंसान को जगाया है। ये देख रहे थे कि इंसान अपना ही नुकसान कर रहा है, औरों का भी नुकसान कर रहा है, इसीलिए इन्होंने झिंझोड़ा है कि इंसान इस नशे से बाहर निकल, इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल, ये जो भव सागर में डूब रहा है इसे उभर जा, तेरा पार उतरना संभव है, तेरा एक म्यार ऊंचा होना संभव है। ये मत सोच के ये संभावना नहीं है, हर इंसान के साथ ये संभावना जुड़ी हुई है, क्योंकि हर किसी में परमात्मा की अंशात्मा है। पीछे भी दास ने ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पर ये पंक्ति पढ़ी कि ईच ह्यूमन सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, डिविनिटी का पोटेंशियल हर आत्मा में है, ईच ह्यूमन सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, लाइक देयर इज पोटेंशियल इन एवरी वुड, हर लकड़ी में आग का पोटेंशियल है, हर लकड़ी में आग लग सकती है। तो जैसे हर लकड़ी में आग का पोटेंशियल है, इसी तरह से ईच ह्यूमन सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। लेकिन वही अज्ञानता का आवरण, वही एक अंधकार जिसके कारण ये डिविनिटी दब कर रह गई, और उसी अज्ञानता के अंधकार के कारण वो सब कुछ, उसकी परतें जम गईं जो वैर के रूप में, नफ़रत के रूप में, लोभ के रूप में, लालच के रूप में, घृणा के रूप में, ज़ुल्म व सितम के रूप में, क्रूरता के रूप में, वो सब हमारी पहचान बनने लग पड़ी। वरना हम पोटेंशियली डिवाइन हैं एज सोल्स। तो इसलिए पुनः वहीं पर स्थापित करने की बात हो रही है, जो वजूद की दास बात कर रहा है, जो असली एंटिटी है अपनी, जो असली वजूद है। इसीलिए कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि ये अपनी असली वजूद की पहचान, अपने स्वयं की पहचान, ये हमारे हिस्से में आ जाए। और जिस जिसके भी हिस्से में आ जाती है, उसी के जीवन में क्रांति घटित हो जाती है, वही फिर औरों के लिए भी वरदान बन जाता है। अपना पार उतारा तो करता ही है, जीवन जीने का सलीका खुद तो सीख ही जाता है, औरों को भी वही सलीका वो प्रदान करता चला जाता है, अपनी चाल को संभाल लेता है, औरों की भी बहकती हुई चाल को उनको संभालने के लिए अपने योगदान तन मन धन के देता है। यही तो संतों का हमेशा से योगदान रहा है कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारने चारों धारे दे। तो ये परोपकारी हृदय जहाँ आप संभलते हैं, औरों को भी संभालते हैं, खुद अपने जीवन में उनके उजाला आता है, औरों के भी जीवन में ये रोशनी लाते चले जाते हैं, खुद इनको वो दृष्टि मिलती है, औरों को भी वो दृष्टि प्रदान करते चले जाते हैं। जैसे वो महापुरुष संत जन गीत अक्सर पढ़ते हैं कि अंधे को अंधा राह दिखाएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह। इसी तरह से जो जिनकी अपनी आंखें नहीं हैं, जो खुद अंधकार में विचरण कर रहे हैं, जो खुद मजो मिल्लत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, जो खुद घृणा नफरत की बीज मनों में बो रहे हैं, वो कहाँ पर हमें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वो कहाँ पर हमारा पार उतारा करेंगे। जो खुद अंधे हैं वो कहाँ पर हमारा वो अंधापन दूर करेंगे, वो तो उल्टा और बेड़ियाँ हमारे पाँव में डालते चले जाएंगे, जैसा कि हो रहा है। तो अंधे को अंधा राह दिखाएगा किस तरह, और बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह। तो इस तरह से महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि जिनका अपना जीवन उजाले से भरपूर हो गया है और जानते हैं कि उजाला कैसे संभव हुआ जीवन में, वही हमारे लिए साधन बनते हैं, हमारे अंधकार को दूर कर देते हैं, हमारे जीवन में सवेरा आ जाता है, और हम अपने इस जन्म का मोल डाल लेते हैं, और ये जीवन की यात्रा हमारी सफल हो जाती है। जिस रूप में पैदा हुए, इंसानी जाति में पैदा हुए, इंसान बनकर हमने जी लिया, तो हमने इस प्रकार से अपने इस सफ़र को सफल कर लिया। तो यही तो महापुरुषों का अभिप्राय रहा है, यही महापुरुषों का संदेश रहा है कि हे इंसानों, ये सच की पहचान कर लो, ये सत्य की लखता कर लो, ये सत्य जानने योग्य है। अनेकों जानकारियाँ दुनियावी मुबारक हैं, लेकिन जो जानकारी तुम्हारे लोक और परलोक को संवार दे, तो ये जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। इसीलिए संदेश दिए जा रहे हैं, इसीलिए पैगाम दिए चले जा रहे हैं कि जान लो इस मालिक को, इस खालिक को, इस मूल को, और अपने स्वयं की पहचान बना लो, स्वयं को जान लो, इस परम अस्तित्व को जानकर। यही है जो जानने योग्य है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, जो संदेश गीता में हमें मिलता है कि जानने योग्य, वर्थ नोइंग, जो जानने योग्य है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये संदेश दिए चले जा रहे हो कि हे इंसानों, जीवन का सफ़र तय हो रहा है, एक एक पल बीत रहा है, एक एक सांस जो लेते हो वो लौट के आता नहीं है। एक बालपन की अवस्था से किशोरावस्था से जवानी तक भी पहुंच गए हो, और कई जवानी से आगे भी निकल गए, मिडल एज वाले बन गए और बुढ़ापे तक भी पहुंच गए, शरीर भी जर्जर हो गया, लेकिन जैसे फरीद जी, जैसे सूफी संतों ने कहा है कि बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबण लगी दे, जे सौ वरियाँ जीवना ते पीतन हो सीखे, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कहाँ पर इंसान की यात्रा चलती है, पाँच बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो, 30 बरस की जब मती उपजी नित नित लोभ नयो, माया जोरी लाख करोरी अभु न तृप्त भयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। तो एक एक पल जो है हाथों से जा रहा है, एक सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं वो लौट के आता नहीं है। तो इतना ये दुर्लभ सांस है, ये दुर्लभ जन्म है, इसकी कदर करें, और जो असली मकसद है हमारा जीवन का, उस मकसद की पूर्ति करें, ये सच की लगता करें, जिसकी कि अक्सर इंसान को चाहत नहीं होती है। ये दौड़ता चले जाता है, सारी उम्र बिता देता है, एक परछाइयों का पीछा करते हुए, बनावटों का पीछा करते हुए, जिनका वजूद आज बदलता है कल बदलता है, आज मिटता है कल मिटता है, उसको हासिल करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए तो ये सारी उम्र लगा देता है, उस तरफ उत्साहित रहता है, जागरूक रहता है, लेकिन जिसके कारण लोक और परलोक संवरना है उसकी तरफ इंसान सोया रहता है। तो इसीलिए महापुरुषों ने, कबीर जी जैसे संतों ने कहा कि साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी, कि सत्य के ग्राहक नहीं है, झूठ के ग्राहक हैं, सत्य की तरफ सोए हुए हैं और झूठ की तरफ जागे हुए हैं, दुनिया और दुनियादारी की तरफ जागे हुए हैं, दुनियावी प्रलोभनों की तरफ जागे हुए हैं, दुनियावी फितरतों की तरफ जागे हुए हैं, लेकिन जिनका जागना अनिवार्य है कल्याण के लिए, वो सब तमाम पहलू सोए हुए हैं, तो उस तरफ जागना है, सत्य की तरफ जागना है। ये दुनिया के मौज मेले ये तो ऐसे ही बताए गए हैं कि ढलती हुई परछाइयाँ हैं, ये तो एक जैसे वेव उठती है समुद्र में, लहर उठती है और आँखों से ओझल भी हो जाती है। इसी तरह से जो दिसे सो सगल विनाशे, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब मिट जाता है। माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी पर चाहती है, पक्की गल समझ लै मेरी ए आंदी ते जांदी है। ये अवतार वाणी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन आप लगातार पढ़ते सुनते हैं कि माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी पर चाहती है, कि जो तुम्हें लुभायमान करती है उसी में गलतान रहते हो। ये पक्की गल समझ लो कि ये शाश्वत नहीं है, ये सदैव रहनी नहीं है। जो आंखें इस तरफ जाती हैं ये देखने वाली आंखें भी नहीं रहनी हैं, और जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो भी नहीं रहना है। जो दिसे सो सगल विनाशे, ये कुछ भी नहीं रहना है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि सत्य की तरफ कदम बढ़ाने हैं, एक शाश्वत रहने वाले का आधार लेना है, इस शाश्वत को अपने हृदय में बसाना है। तो इसलिए महापुरुष इस तरफ प्रेरित ये करते चले जा रहे हैं। वो इंसान की हालत है कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, कि भजन करने को तो आलसी है लेकिन भोजन करने को तैयार है। वो मिसाल दास ने कई कई दफ़ा दी कि एक कोई इंसान आया, वो जो आके उन्होंने निमंत्रण दिया उस मोहल्ले से कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में इस तरह से एक भजन हमने आयोजित किया है, तो आप आइए। तो पति पत्नी कहने लगे, नहीं जी, हमारे पास तो समय नहीं है, क्योंकि पति पत्नी ने पहले ही सोचा था कि आज थोड़ी आउटिंग करते हैं, कहीं पर बाहर खाना खाते हैं। कितने ही दिन हो गए घर का वही खाना, वही सब्जियां, थोड़ा जायका बदलते हैं, कहीं बाहर जाकर खाते हैं। तो जब वो निमंत्रण आया भजन के लिए, तो इन्होंने कह दिया कि बड़ा ज़रूरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे। वो इंसान वापस लौटते हुए कह गया, चलो मेरी ऐसी श्रद्धा थी, चाहत थी, आप आइए हमारे घर में, चलो आपको ज़रूरी काम होगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि 20 मिनट के बाद एक और इंसान आता है, और वो आकर कहता है, जी मैं निमंत्रण देने आया हूँ आपको। किस चीज़ का निमंत्रण? कहता है कि हमारे घर आज भोजन है। तो भोजन है सुनते ही दोनों की आंख में चमक आ गई कि वैसे ही हमने सोचा था बाहर खाएंगे, वहाँ तो पता नहीं 300-400 रुपया खर्च हो जाना था रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में, ये तो मुफ्त में ही निमंत्रण आ गया। हमारा मतलब तो यही था कि जायका बदलें, कुछ चेंज हो, तो ये तो फ्री में ही हमें मिलने जा रहा है। तो एकदम से कहते, क्यों ना आएंगे, आप इतने श्रद्धा से बुलाने आए हैं, हम क्यों ना आएंगे। तो एड्रेस लिया और पहुंच गए शाम को वहाँ पर। वहाँ पहुँचे, देखते हैं कि उस घर से एक निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है, तीसरा निकल रहा है, बाहर निकलते आ रहे हैं। और उधर जो घर का मालिक बाहर निकला, जो निमंत्रण देने आया था, वो कहने लगा, हाँ भाई साहब, आपको भोजन कैसे लगा? तो वो पति पत्नी एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखते हैं कि अभी तो एक पानी का गिलास भी नहीं मिला, और ये जनाब पूछ रहे हैं कि भोजन आपको कैसे लगा। अभी सोच ही रहे हैं तो आगे से वो घर का मालिक कहते हैं कि कितना अच्छा भोजन था, वो कितना सुर में गा रहा था, कमाल का भोजन था, परमात्मा का कितना गुणगान। तो बात ये निकली कि वो जो निमंत्रण देने आया था वो बंगाल से था, और वो भजन को भोजन कहते हैं। तो उस भ्रम में आ गए कि शायद ये भोजन के लिए हमें बुलाने आए हैं। वो बंगाली वो भजन के लिए ही निमंत्रण देने आया था, जैसे पहला वो सज्जन आया था, लेकिन वो भाषा और उच्चारण के उस भ्रम में आकर इन्होंने सोचा कि भजन का इनविटेशन है, और चल निकले उस तरफ। तो कहने का भाव क्या है, इसी से ही वो पंक्ति बनी कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार। कि एक भजन करने को आलसी है और भोजन को तैयार, यानी कि दुनियावी सिलसिलों की तरफ तो हमेशा तैयार है। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, कि बुरे काम के लिए तो हमेशा उत्साहित है, और वो शिक्षा झट से धारण कर लेता है। लेकिन वो सब वो कुछ सीखता और अपनाता है जो डूबने का कारण बनता है। और महापुरुष कह रहे हैं कि वो कदम उठा, जिन कदमों को उठाने से तेरा म्यार ऊंचा हो जाएगा और तेरा लोक और परलोक सवर जाएगा। इत्थे मिलन वडियाइयां, दरगे मोक्ष द्वार, ये तेरे हिस्से में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन भक्त जन ये संदेश ये पैगाम ये देते चले जा रहे हैं, ताकि हम इस तरह से अपनी अवस्था को हम बनाते चले जाएं। और जो बाकी सिलसिले हैं, ये दुनियावी सिलसिले जो हैं, इनको हम उतना ही दर्जा दें जिसको गुजरान माना गया है, इससे अधिक नहीं। तो महापुरुष संत जनों की वाणी वो यही पुकार पुकार कर कह रही है। तो आज भी आप सभी महापुरुष संत जन इस संत समागम के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, यही संदेश लेकर, यही पैगाम लेकर, कि हम भी अपने जीवन में ऐसा एक बदलाव लाएं, एक ऐसी अपने जीवन में क्रांति हम लाएं, ऐसी क्रांति कि हम एक सही इंसान बन पाएँ, देवता बन पाएँ और हम अपने मंजिल को पा लें, अज्ञानता को दूर करके, उजाला करके। इस प्रकार से ये एक क्रांति जो है ये हमारे जीवन में ये घटित हो जाए, हर किसी के जीवन में ये घटित हो जाए, यही अभिप्राय है ऐसे आयोजनों का और महापुरुषों संतों के देन का, यही अभिप्राय उनके पैगामों का, यही उद्देश्य कि इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए और इंसान को ये जागृति ये मिल पाए। ऐसी ही शुभकामनाएं होती हैं भक्त के हृदय में, और विशेषकर दुनिया में नया वर्ष का आगमन जब भी होता है तब भी ऐसी विशेष दी जाती हैं, ऐसी एक दूसरे को मुबारकबाद जहां नए वर्ष के आगमन पर दी जाती हैं, वहां पर साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी के लिए और अनेकों रूपों में ये गुड विशेष दी जाती हैं। तो वो तो नया वर्ष 2015 का चढ़ा और अब तीसरा महीना भी उसके हम मध्य तक पहुंच चुके हैं तीसरे हफ्ते में, लेकिन देसी तरीके से जो हमारी संस्कृतियां बनी हैं उस लिहाज से आज साउथ इंडिया में उगाड़ी मनाई जा रही है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है और हमारे सिंधी भाई चेती चेत मना रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नए वर्ष का आगमन दे रहे हैं, आगमन की शुभकामनाएं दे रहे हैं उस रूप में, और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं, और साथ ही वही बात के प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि दाता ऐसी कृपा करे, सबको सुकून और चैन मिले, सभी के जीवन में खुशहाली आए, और जैसे कहा कि सबके जीवन में ऐसी जागृति आए कि ये सभी सच्चे इंसानी रूप धारण करके इस धरती के लिए वरदान बन जाएं, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ें, मोक्ष और मुक्ति के पात्र बने। सत्संग जी धन्यवाद।